नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नेहा गोस्वामी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर साप्ताहिक जनसुनवाई के दौरान हमला, दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने हमले की निंदा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह हमला केवल उनके ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के संकल्प पर है। शिक्षा विभाग को सीएम श्री स्कूलों में दाखिले के लिए 50,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने स्कूलों में जलभराव से निपटने के लिए अधिकारियों को ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे, मुख्यमंत्री ने कहा, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में आउटर दिल्ली वॉरियर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला जारी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर सिविल लाइन्स थाने में भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के तहत मामला दर्ज किया गया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल श्रीमती गुप्ता की हालत स्थिर है।
सुबह जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री जिस तरह से जनता के बीच में रहकर लगातार बात करती हैं, वो बात कर रही थी। ऐसे में एक शख्स उनके पास आता है, कुछ कागज आगे रखता है और अचानक उनका हाथ पकड़कर उनको खींचने की कोशिश करता है और उस दौरान थोड़ी सी धक्का मुक्की जो होती है तो कुछ सर उनका शायद हल्का सा लगा है किसी कोने पे और उसके बाद तत्काल लोगों ने उसको पकड़ लिया है। कौन है वो आदमी, क्या उसकी जानकारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। मुख्यमंत्री की हालत अभी स्थिर है, डॉक्टर उनको देख चुके हैं।
दिल्ली कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह ने मुख्यमंत्री पर हुए हमले की निंदा की। श्री सिंह ने कहा कि जिस दौरान यह घटना घटी उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री रोजाना की तरह अपने आवास पर जनसुनवाई कर लोगों की समस्याएं सुन रही थीं।
दिल्ली में एक ऐसी मुख्यमंत्री मिली है जो रोज अपने घर पर जन सुनवाई का कार्यक्रम कर रही थी। रोज 1,000 से 2,000 लोग उनके पास में पूरे दिल्ली एनसीआर से आते थे और वो बिना रोक टोक के, बिना कोई ज्यादा सिक्योरिटी के हर आदमी से मिला करती थी, उनकी समस्याएं सुना करती थी। तो आज जो भी हुआ है वो बहुत ही निंदनीय है।
वहीं दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि आरोपी पिछले 24 घंटों से मुख्यमंत्री के घर की रेखी कर रहा था। श्री सिरसा ने बताया कि हमलावर के पास जनसुनवाई के कोई कागजात नहीं थे और वह केवल हमला करने के इरादे से ही आया था।
उसने हमला करने की जो मंशा थी वो बड़ी स्पष्ट है। उसके हाथ में कोई जनसुनवाई का कागज भी नहीं था, उसके हाथ में कोई ऐसी दरख्वास्त भी नहीं थी और क्योंकि उसके मोबाइल से पुरानी वीडियो मिली है कल की जब वो वहाँ पर शालीमार बाग गया है और यहाँ की वीडियो भी मिली है, इससे बहुत बात स्पष्ट होती है कि मकसद जो था वो हमला ही था।
इस बीच आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने भी हमले की निंदा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा की कोई जगह नहीं है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने भी मुख्यमंत्री पर हुए हमले की निंदा की।
बहुत दुखद है और माननीय मुख्यमंत्री पूरे दिल्ली की नेतृत्व करती हैं और मैं समझता हूं कि इस तरीके की घटना की जितनी भर्त्सना की जाए वो कम है।
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने उनके ऊपर हुए हमले को लेकर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह हमला केवल उनके ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के संकल्प पर हुआ है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि हमले के बाद वह सदमे में थी लेकिन अब वह बेहतर महसूस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा कायराना प्रयास उनके हौसले को नहीं तोड़ सकता है। श्रीमती गुप्ता ने अपने शुभचिंतकों को आश्वासन दिया कि वह जल्द ही फिर से जनता के बीच सक्रिय रूप से काम करेंगी। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई और जनता की समस्याओं का समाधान पहले की तरह ही गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने जनता के विश्वास और समर्थन के लिए आभार प्रकट किया। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के शिक्षा विभाग को सीएम श्री स्कूलों में दाखिले के लिए 50,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। शिक्षा मंत्री श्री आशीष सूद ने बताया कि 15 अगस्त से प्रवेश प्रक्रिया शुरू होने के बाद से सिर्फ कुछ ही दिनों में विभाग को यह आवेदन प्राप्त हुए हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोग शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव के लिए तैयार हैं। श्री सूद ने कहा कि सरकार सभी आवेदकों के लिए प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए हर संभव कदम उठा रही है। शिक्षा विभाग को अभी तक कक्षा 6 के लिए करीब 15,000, कक्षा 7 के लिए 15,000 से अधिक और कक्षा 8 के लिए 20,700 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने राजधानी के स्कूलों में जलभराव की समस्या से निपटने के लिए संबंधित अधिकारियों को ठोस कार्यवाही करने के निर्देश दिए। निठारी और किराड़ी के कुछ स्कूलों में जलभराव की समस्या की गंभीरता का स्वतः संज्ञान लेते हुए उन्होंने कहा कि स्कूलों की स्थिति, शिक्षा, स्वास्थ्य और हजारों बच्चों और कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। श्री सूद ने पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस समय यह स्कूल बन रहे थे उस समय सरकारों ने निर्माण संबंधित निर्धारित नियमों का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कई स्तर पर प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि स्कूलों में बेहतर निकासी व्यवस्था के लिए लोक निर्माण विभाग, दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के कई स्कूलों में आज बम की धमकी के फर्जी कॉल आए। दिल्ली अग्निशमन सेवा ने बताया कि ये फर्जी कॉल आज सुबह राष्ट्रीय राजधानी के मालवीय नगर, प्रसाद नगर और द्वारका क्षेत्रों के स्कूलों को किए गए। दिल्ली पुलिस और बम निरोधक दस्ते ने परिसर की गहन जांच की और ऐसी किसी भी धमकी की संभावना से इनकार किया। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने 24 अगस्त से शुरू होने वाले 2 दिवसीय अखिल भारत अध्यक्ष सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली पुलिस आयुक्त SBK सिंह, विशेष पुलिस आयुक्त यातायात के जगदीशन, विशेष पुलिस आयुक्त सुरक्षा जसपाल सिंह और दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक के बाद विधानसभा अध्यक्ष और अधिकारियों ने मिलकर विधानसभा भवन का निरीक्षण किया और प्रवेश, निकास, बैठने की व्यवस्था, आपातकालीन प्रोटोकॉल तथा अन्य आवश्यक तैयारियों का जायजा लिया। दिल्ली के कला और संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा ने आज विधायक शिखा राय और दुर्गा पूजा समितियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने पूजा आयोजनों में आ रही समस्याओं पर चर्चा की और अधिकारियों को तुरंत समाधान के निर्देश दिए। श्री मिश्रा ने कहा कि दुर्गा पूजा दिल्ली की सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण सर्जरी मिशन और शिक्षा क्लिनिक का आयोजन कर रहा है। इस सेमिनार का उद्देश्य जलने के निशान और सिकुड़न से पीड़ित वंचित रोगियों के लिए निःशुल्क पुनर्निर्माण सर्जरी उपलब्ध कराना है। इस सेमिनार में लगभग 110 मरीजों का पंजीकरण हो चुका है, जिनमें से 40% आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लाभार्थी हैं। दिल्ली के चाणक्यपुरी स्थित राष्ट्रीय रेल संग्रहालय में आज आम जनता के लिए राष्ट्रपति सैलून का अनावरण किया गया। यह सैलून आज से 24 अगस्त तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। इसका उद्देश्य भारत के माननीय राष्ट्रपतियों द्वारा राजकीय यात्राओं के लिए उपयोग किए जाने वाले भारतीय रेलवे के राष्ट्रपति सैलून के अनूठे इतिहास को जानना है। दिल्ली यातायात पुलिस ने शहर भर में सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया। इसके तहत यातायात पुलिस ने स्कूली छात्र, साइकिल चालक, ऑटो टैक्सी चालक, सार्वजनिक परिवहन कर्मचारी और दैनिक यात्रियों को नियमों के पालन, महिला सुरक्षा और अनुशासित सड़क उपयोग के महत्व की जानकारी दी। इसके अलावा दिल्ली यातायात पुलिस ने कई स्कूलों में एमई वैन डिस्प्ले के साथ जागरूकता सत्र आयोजित किए। इन सत्रों में 2300 से अधिक छात्रों और 65 शिक्षकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। दिल्ली विश्वविद्यालय के किरोड़ीमल कॉलेज में आज दृष्टि बाधित छात्रों के सशक्तिकरण की दिशा में समावेश नामक परियोजना का शुभारंभ किया गया। इस परियोजना के तहत कॉलेज परिसर में आईवे हेल्प डेस्क की स्थापना की गई। इस अवसर पर दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के सचिव राजेश अग्रवाल ने कहा कि मंत्रालय प्रारंभिक कक्षाओं के लिए ब्रेल पुस्तकों और कॉलेज के छात्रों की सुविधा के लिए ब्रेल रेडी फॉर्मेट पुस्तकों को बढ़ावा देगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। लोकसभा ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन और विनियमन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। यह विधेयक ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स को प्रोत्साहित करने और हानिकारक ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि पिछले 11 वर्षों में डिजिटल प्रौद्योगिकी क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि ऑनलाइन मनी गेमिंग समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है।
ऑनलाइन मनी गेम्स जो कि आज समाज में बड़ा चिंता का विषय बना है। कई ऐसे परिवार है, कई ऐसे व्यक्ति है जिनको ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है। फ्रॉड और चीटिंग एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि पता नहीं चलता कि कौन किसके साथ खेल रहा है। कई परिवार नष्ट हुए, एक्सट्रीम केसेस हुए, सुसाइड भी हुई। समाज में जो बहुत एक बड़ी बुराई आ रही है उससे बचने के लिए ये बिल लाया गया।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 130वां संविधान संशोधन विधेयक और संघ राज्य क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक भी पेश किया। श्री शाह ने बिहार में विशेष गहन संशोधन प्रक्रिया को लेकर विपक्ष के विरोध के बीच ये विधेयक पेश किए।
महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि भारत के संविधान का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए। महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 का संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाए।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मुद्दे पर बाधित रही, इसलिए कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। लोकसभा 4 बार स्थगित की गई, जबकि राज्यसभा 2 बार स्थगित की गई और अंततः दोनों सदनों की कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने संसद भवन में अपना नामांकन दाखिल किया। एक रिपोर्ट।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, किरेन रिजिजू तथा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रफुल्ल पटेल सहित एनडीए गठबंधन के अन्य नेता उपस्थित थे। नामांकन दाखिल करने से पहले श्री राधाकृष्णन ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस स्थल पर देश के प्रमुख नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों की प्रतिमाएं हैं। उन्होंने सबसे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। विपक्ष के इंडिया गठबंधन ने उपराष्ट्रपति पद के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन रेड्डी को प्रत्याशी बनाया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान 9 सितंबर को होगा। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। नामांकनों की जाँच 22 अगस्त को होगी और इस महीने की 25 तारीख तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। समाचार कक्ष से सरफिरोजी।
यमुना नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान से काफी नीचे है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि राष्ट्रीय राजधानी में पुराने रेलवे पुल पर आज सुबह 6 बजे तक जलस्तर 204.76 मीटर दर्ज किया गया। राजधानी में आज मौसम सामान्य रहा। आज का अधिकतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में आउटर दिल्ली वॉरियर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच मैच खेला जा रहा है। यह मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में हो रहा है। नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने एक विकेट पर 73 रन बना लिए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान हमला। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। भाजपा सहित सभी राजनीतिक दलों ने हमले की निंदा की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा, यह हमला केवल उनके ऊपर नहीं बल्कि दिल्ली की सेवा और जनता की भलाई के संकल्प पर है। शिक्षा विभाग को सीएमसी स्कूलों में दाखिले के लिए 50,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने स्कूलों में जल भराव से निपटने के लिए अधिकारियों को ठोस कार्रवाई के निर्देश दिए। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से काफी नीचे। मुख्यमंत्री ने कहा, स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में। और दिल्ली प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट में आउटर दिल्ली वॉरियर्स और नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।